मेरे आत्मीय मित्रों नमस्कार। आज 28 जून 2018 है और आज के इस afeis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और दोस्तों आप सबके साथ ही मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन एक नौजवान साथी का भी जिन्होंने एकेडमी की 21 अक्टूबर से 4 नवंबर के बीच होने वाले क्लासेस के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। इन दोस्त का नाम है श्रेयस अटरे जो खंडवा मध्य प्रदेश से हैं। ये वही खंडवा है जहां अशोक कुमार और किशोर कुमार जैसे महान कलाकार ने जन्म लिया था। तो श्रेयस आपका मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के मुख्य विषय में मैं आपसे कबीरदास जी के बारे में कुछ बातें करूंगा, लेकिन बहुत ही थोड़ी सी बात करने का वक्त मिल सकेगा क्योंकि आज न्यूज एनालिसिस के तहत इतने सारे टॉपिक हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हैं कि यूं समझ लीजिए कि चूंकि मुख्य विषय पर हम लोग बात करते हैं तो इसीलिए बस मैं मुख्य विषय की यहां चर्चा कर रहा हूं। अदरवाइज दूसरे ही विषय इतने इंपॉर्टेंट हैं कि उनमें से सारे विषयों को मुख्य विषय बनाया जा सकता है। तो आइए पहले न्यूज एनालिसिस के तहत कुछ बातों को देख लेते हैं। एक जो बहुत जो महत्वपूर्ण खबर है दोस्तों वह आपने सुनी है कि यूजीसी जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है सरकार ने उसे समाप्त करने का निर्णय लिया है और उसकी जगह पर HECI नामक संगठन बनाने का फैसला किया है। HECI यानी कि H स्टैंड फॉर हायर, ई एजुकेशन, सी कमीशन, आई इंडिया, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। आज के अखबारों में आपको इसके बारे में पढ़ने को मिलेगा भी। और चूंकि अभी उसका एक ड्राफ्ट कैबिनेट के सामने प्रस्तुत किया गया है और वो अब पब्लिक के ओपिनियन के लिए भेजा गया है तो उसमें देखिए तब्दीलियां वगैरह तो अभी होंगी, तो फाइनल स्टेज पर जब चीजें आ जाएंगी तब हम लोग इस पर संभव हुआ तो बात करेंगे, लेकिन ये फैक्ट आपके दिमाग में होना चाहिए। अब आप देखिए कि सिविल सर्विस के लिए ये टॉपिक कैसे इंपॉर्टेंट है। अब सिविल सर्विस में इस तरीके से नहीं पूछा जाएगा कि ये जो HECI है क्या है, इसके क्या अधिकार हैं। अब इससे जो प्रश्न खड़ा होता है, जो प्रश्न बनता है वो ये है कि यूजीसी को खत्म करके और उसकी जगह एक नए ऑर्गेनाइजेशन के एस्टेब्लिशमेंट की जरूरत क्यों पड़ी, पहली बात। दूसरा इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है जो बहुत दूर नहीं है कि हमारा जो हायर एजुकेशन है, हायर एजुकेशन की भारत में इतनी बुरी हालत क्यों है, और इस पर मेंस में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। मित्रों मैं बता सकता हूं कि वास्तव में इतनी दयनीय हालत हमारे हायर एजुकेशन की हो चुकी है, इतनी दयनीय हालत हो चुकी है कि लगता है कि उसमें से हायर शब्द हटा देना चाहिए, बेकार के लगाया गया है हायर शब्द। और सच पूछे तो 1975 के बाद और खासकर 1980 के बाद से लगातार हायर एजुकेशन में गिरावट आती चली गई है, और जब से प्राइवेटाइजेशन का दौर चला है और प्राइवेट कॉलेज और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज और इन सबको लगातार फटाफट लाइसेंस दिए जा रहे हैं, स्कूल और कॉलेजेस खुलते चले जा रहे हैं, उसमें तो स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि आपको सैकड़ों हजारों यूनिवर्सिटी आपको मिल जाएंगी, कॉलेज आपको मिल जाएंगे, आप मत जाइए, फीस दे दीजिए, परीक्षा में बैठने की थोड़ी सी तकलीफ कर लीजिए, पेपर कैसे बना इससे कोई लेना देना नहीं है, आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और आज देखिए कि यही एक कारण है कि अनएम्प्लॉयमेंट की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, यहां तक कि प्रोफेशनल डिग्री तक में हो रही है ये सब चीजें। डॉक्टर्स के बारे में आप देखिए कि क्या हालत हो रही है, कितने मेडिकल कॉलेजेस के स्टूडेंट जब पढ़ करके निकलते हैं और कहीं नौकरी के लिए जाते हैं तो पूछते हैं कि अच्छा तुम वहां से पढ़ करके आए हो, तो उनको रिकॉग्नाइज नहीं करते। वो मेडिकल एजुकेशन की भी यही हालत है। मेडिकल एजुकेशन को ठीक ठाक करने के लिए तो सरकार ने बकायदे एक आयोग बनाने का विधेयक भी तैयार कर लिया है और मोस्ट प्रोबेबली अभी जब मानसून अधिवेशन शुरू होगा तो उसमें वो विधेयक पेश भी किया जाएगा। आप देखिए कि क्या होता है, मेडिकल एजुकेशन तक की हालत इतनी है। इंजीनियरिंग कॉलेज आप देखिए कितने खुल चुके हैं, MBA आप देखिए कि गली मोहल्ले में MBA खुले हुए हैं। तो हायर एजुकेशन की अपनी एक रेपुटेशन होती है, तो इस पर आपको तैयारी करना चाहिए कि भारत में जो हायर एजुकेशन की इतनी बुरी हालत हुई है क्यों हुई है और इसके लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं, और उसमें ये जो HECI बनने का फैसला किया गया है वो कितना सकारात्मक रोल प्ले कर सकता है, ये एक टॉपिक हुआ। मित्रों, जो दूसरा जो शब्द है एक मैं चर्चा करना चाहूंगा वो है एजम्पशन द्वीप। इस तरह के प्रश्न प्री में पूछे जाते हैं। एजम्पशन द्वीप, आपको ध्यान होगा कि कुछ दिनों पहले हमने सिसल्स के बारे में बात की थी। उस समय मैंने आपको बताया था कि हिंद महासागर के वजह से सिसल्स के साथ भारत के संबंध कितने अधिक मायने रखते हैं। देखेंगे यार कि अब इस पर आर्टिकल आने शुरू हो गए हैं, यहां तक कि एडिटोरियल कमेंट भी आने शुरू हो गए हैं। अभी भारत ने सेशेल्स के साथ जो समझौता किया है, कई क्षेत्रों में समझौते हुए हैं, और उसमें जो सबसे बड़ी बात है जो हाईलाइट की जानी चाहिए, और सिविल सर्विस की तैयारी इसी तरह से होती है कि सारी चीजों को आप लेकर के नहीं चलते, उसमें जो महत्वपूर्ण चीजें होती हैं आप वो लेकर के चलते हैं। तो उसमें भारत को जो उनका एजम्पशन द्वीप है उसमें नौसैनिक अड्डा बनाने की अनुमति मिल गई है, यानी ये कह लीजिए कि ये समझौता हो गया है एजम्पशन द्वीप। अब ये जो एजम्पशन द्वीप है इसके बारे में आपको थोड़ी सी बातें मालूम होनी चाहिए कि ये कहां है, किस देश में है, भारत के लिए ये क्यों महत्वपूर्ण है, ये आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो प्री की तैयारी आपकी एजम्पशन द्वीप के नाम से हो जाएगी, और यदि हिंद महासागर के संदर्भ में कोई प्रश्न मेंस में पूछा गया तो कम से कम आपके पास एक फैक्ट है कि आप मेंशन कर सकेंगे कि सेशेल्स द्वीप के साथ भारत ने, अभी सेशेल्स देश के साथ भारत ने भी एजम्पशन द्वीप पर एक समझौता किया है और वहां वो अपना नौसैनिक अड्डा बनाएगा। फिर आप थोड़े से सेशेल्स द्वीप के लिए भी आप जान लीजिए कि किस तरह से भारत उसको अपनी सहायता प्रदान करता है। आपने न्यूज में यह भी सुना है कि भारत ने बकायदे उसे एक विमान भेंट किया है कि वो अपने तटों की निगरानी कर सके, और भारत और सेशेल्स के बीच में किस तरीके से सामरिक समझौते हैं ये आप थोड़ा सा देख लीजिए। और इसके लिए मैं आपको बकायदे एडिटोरियल कमेंट भी प्रोवाइड कर रहा हूं और आर्टिकल भी प्रोवाइड कर रहा हूं, उसमें से आप इंपॉर्टेंट चीजें अपने लिए निकाल लीजिएगा। मित्रों, एक जो खबर है वो हालांकि अप्रत्यक्ष खबर है, और वो कि आपको मालूम है कि कुछ समय पहले, शायद एक आध महीना हुआ होगा, अमेरिका ने ईरान के साथ के परमाणु समझौते को तोड़ दिया है और उसने ईरान पर कुछ प्रतिबंध लगाए अमेरिका ने, और दुनिया के दूसरे देशों से भी उसने कहा कि आप ईरान से तेल खरीदना बंद कर दीजिए। अब उसने सीधे सीधे कह दिया है कि 4 तारीख से आपको या तो ईरान से तेल खरीदना बंद कर दीजिए या फिर और प्रतिबंधों के लिए आप तैयार हैं, यानी कि दूसरे देशों को वो कह रहा है जिसमें भारत भी शामिल है। भारत के लिए बहुत ही मतलब समस्या वाली बात होगी क्योंकि भारत सबसे ज्यादा तेल तो देखिए इराक से और फिर सऊदी अरब से मंगाता है, और इसके बाद फिर ईरान का नंबर है। ईरान, चूंकि ईरान भारत के काफी नजदीक पड़ता है तो इस हिसाब से ईरान का तेल भारत को थोड़ा सा सस्ता भी पड़ता है, और ऐसी स्थिति में अब अगर भारत ने तेल मंगाना बंद कर दिया तो हमें यहां एक समस्या पैदा हो सकती है, और यदि हमने बात नहीं मानी तो फिर एक अलग तरीके की समस्या पैदा हो सकती है कि अमेरिका फिर क्या आर्थिक प्रतिबंध लगाता है और क्या क्या करता है, अब भगवान जाने। तो इस पर थोड़ी सी निगाह रखिए, लेकिन एक महत्वपूर्ण खबर और तथ्य के रूप में तो यह महत्वपूर्ण है ही कि किस तरह से अमेरिका दुनिया पर, आप यूं कह लीजिए कि अपनी दादागिरी लाद रहा है, आप ये बात कह सकते हैं। मित्रों, एक मैं आपको टाइम्स ऑफ इंडिया का बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल प्रोवाइड कर रहा हूं, बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल, और मेरी कोशिश होगी कि इसका हिंदी वर्जन भी मैं आप लोगों को उपलब्ध कराऊं, और यह है वन धन योजना पर, वन धन योजना। और वन धन योजना को आप इंडिपेंडेंट टॉपिक के रूप में तैयार कर लीजिएगा इस साल मेन की दृष्टि से भी और 2019 के प्री की दृष्टि से भी। देखिए, जो वन धन योजना है अप्रैल इसी साल अप्रैल में प्रधानमंत्री जी ने लागू की थी, और ध्यान देने की बात यह है, देखिए अगर पूछा जाए कि वन धन योजना की निगरानी कौन सा मंत्रालय करेगा भारत सरकार के, तो बट नेचुरली कि फॉरेस्ट एनवायरमेंट हमारे दिमाग में आएगी बात, लेकिन इसकी जो नोडल एजेंसी है याद रखिए वो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। ट्राइबल अफेयर्स क्यों है? क्योंकि इस वन धन योजना का जो मुख्य लक्ष्य है वो ये है कि जो ट्राइब्स हैं जो वनोपज पर निर्भर होते हैं और वन से उनको जो चीजें मिलती हैं उनका वो सामान बनाते हैं और बेचते हैं, चटाई बना ली, सूपा बना लिया, डलिया बना लिया, इस तरह की चीजें बनाते हैं और फिर वो बेचते हैं। तो किस तरीके से ये जो सामान बनाते हैं इन सामान में वैल्यू एडिशन करके उनको अच्छी कीमत दिलाई जा सके ताकि उनकी आय बढ़ सके। और देखिए कि वन वनोपज पर जो आधारित हमारी जनसंख्या है वो कम नहीं है, वो 10 करोड़ है लगभग। सोचिए, ट्राइब्स तो लगभग लगभग इसी पर निर्भर करते हैं। और ये लोग बकायदे, इन लोगों की जो टोटल आय होती है साल भर की, एक जो अध्ययन किया गया उसमें से 20-40% आय केवल उनको ये माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस से ही मिलता है। एक शब्द आपको मिलेगा पढ़ने को, MFP, यानी कि माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। और खासकर जो ट्राइब्स विमेन है उनकी आय का तो सबसे बड़ा स्रोत यही होता है। तो वन धन योजना, इस पर चाहिए कि आप बहुत अच्छे से तैयारी कर लें। दोस्तों, अब बहुत कम वक्त बचा है, अब मैं कबीरदास जी पर आना चाहूंगा। और मैं कबीरदास जी पर क्यों आ रहा हूं, आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी मगहर जाने वाले हैं, एकेडमी का वह उद्घाटन करेंगे। उत्तर प्रदेश में मगहर है। देखिए, जो कला साहित्य संस्कृति आपके सिलेबस में है, प्री में भी है, मेंस में भी है। प्री में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मेंस में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये बात अलग है कि उनकी संख्या बहुत कम होती है, लेकिन क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि आप इन्हें अवॉइड नहीं कर सकते, मतलब अवॉइड करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इसके क्वेश्चंस बहुत कठिन क्वेश्चंस नहीं होते। अगर हम इस तरह के प्रश्न को भी अवॉइड करेंगे तो सवाल यह है कि फिर बनाएंगे किसको। तो मित्रों, जो कबीरदास है वो जो हमारा भक्ति काल है, या कह लीजिए कि इतिहास का जो मध्य काल है, उसके बहुत महान संत हुए हैं। महान संत जो निर्गुण परंपरा के थे, यानी कि वो ईश्वर का कोई स्वरूप नहीं मानते थे, और सबसे बड़ी बात है कि बहुत ही प्रोग्रेसिव अप्रोच के थे। प्रोग्रेसिव अप्रोच का मतलब है कि वो धर्म, जाति और इन सब चीजों का अपने ढंग से विश्लेषण करते थे, और हिंदू मुसलमान और फलाना फलाना इनका केवल खंडन ही नहीं करते थे, बल्कि बहुत कड़े शब्दों में खंडन करते थे, बहुत कड़े शब्दों में। मगहर जा रहे हैं प्रधानमंत्री जी। मगहर क्या है, आप में से बहुत से लोग जानते होंगे, जो उत्तर प्रदेश के जो स्टूडेंट हो तो डेफिनेटली जानते ही हैं, यहां तक कि हिंदी बेल्ट के भी शायद जानते होंगे। भारत के दो स्थान उस समय बड़े प्रसिद्ध थे इस रूप में, एक काशी और दूसरा मगहर। कबीरदास जी तो काशी में ही रहते थे, तो यह माना जाता था कि जिनकी मृत्यु काशी में होती है उनको स्वर्ग मिलता है, और जिनकी मृत्यु मगहर में होती है उनको नर्क मिलता है। मतलब फिर चाहे आपने कुछ भी किया हो, कुछ भी, काशी में बस मरने आ जाइए तो आपको स्वर्ग मिल जाएगा। और आप बहुत धार्मिक व्यक्ति हैं, ये हैं, किसी काम से मगहर में गए थे, मृत्यु हो गई, तो अब आपको नर्क ही मिलेगा, चाहे आपने कितने भी अच्छे कर्म क्यों ना किए हों। तो कबीर दास जी ने देखिए क्या किया, मतलब वो इन चीजों के कितने जबरदस्त विरोधी थे। इसी एक उदाहरण से आपको उसका अंदाजा लग जाएगा कि जब उनको लगा कि अब मेरी मृत्यु निकट है, तो वो काशी छोड़कर मगहर चले गए। सोचिए, और मगहर में ही फिर उनका उनके अंतिम क्षण बीते, वहीं उनका निधन हुआ मगहर में। और वो दिखाना चाह रहे थे कि ठीक है, आप लोगों की ये जो मान्यता है रखे रहिए, लेकिन मैं वहीं जाकर के मृत्यु को प्राप्त करूंगा। आप लोगों का कहना है, मतलब वो इसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं, उसको अस्वीकार कर रहे हैं, और प्रैक्टिकली उसको वो करके दिखा रहे हैं। ये नहीं कि भैया दूसरों के लिए तो वो कह रहे हैं कि काशी और मगहर दोनों एक ही है, ऐसा नहीं है। मित्रों, कबीरदास के हजारों दोहे हैं जो आज जनता की जुबान पर मौजूद है, जैसे कि किसी शायर की शायरियां, बड़ी जो लोकप्रिय शायरियां होती हैं वो मौजूद होती हैं, उसी तरह से कबीर के दोहे लोगों की जुबान पर हैं, उनके कंठ पर हैं, और बकायदे कबीर के गायन की तो एक शैली निकल गई है, जो कबीर के पदों को गाते हैं। कुमार गंधर्व तो क्या कबीर के पदों को गाते थे, मैंने कुमार गंधर्व जी के सामने बैठ करके कबीर के पदों का गायन सुना है। जब वो कहते थे कि झीनी झीनी बिनी चदरिया, तो आपको एहसास होता था कि सच में कोई चदरिया बिन रहा है, और उसमें से झिनी झिनी जैसा कुछ सुनाई पड़ रहा है, झिनी झिनी जैसा कुछ दिखाई पड़ रहा है। एक अनपढ़ और अशिक्षित व्यक्ति के द्वारा फिलॉसफी की इतनी गहरी बातें कर पाना लोगों को आश्चर्य में डाल देता है। वो महान व्यक्तित्व था कबीर। तो इस साल आपको कबीर पर भी थोड़ी सी तैयारी कर लेनी चाहिए। तो दोस्तों, मुख्य विषय के बारे में इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, देख लीजिएगा। ईमेल लिखने वाले सभी मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और उन्हीं में से 5 दोस्तों के नाम हैं: रवि कुमार भागलपुर बिहार से, सदा शिव वर्मा, रचित गुप्ता, प्रज्ञा गोस्वामी ग्वालियर मध्य प्रदेश से, और तनु प्रिया सिंह मोहाली पंजाब से। आप सबका भी बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।